दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखह प्रभु नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखे मेरी। बेसुमार अथाह अगनत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी की हजूरी में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी सात संगत जी, गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों के कल्याण के लिए सुखमनी प्रदान किए हैं। सुखमणि अर्थात परम सुख परम आनंद, सुखमणि अर्थात परमात्मा, सुखमणि अर्थात जीवन का लक्ष्य। यदि आप इस अमोलक जीवन को पाकर सुखमणि प्राप्त कर लिया तो समझ जाओ यह जीवन की यात्रा सफल हो गई। यदि इस शरीर को पाकर के सुखमणि को प्राप्त नहीं किया तो ऐसा समझो कि यह जीवन दो कौड़ी का भी नहीं। जीवन का तो लक्ष्य एक ही है कि मृत्यु से पहले पहले परम सत्य को जान लेना, और परम सत्य है सुखमणि, परम आनंद है सुखमणि। सुखमणि का भाव यह है कि जीवन की अंतिम यात्रा को पा लेना। जो मनुष्य साधु संगत करके, ऐसा पुरुष जो साधना के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है वह साधु है। साधु हम उसे कहते हैं जो जाग कर जीता है। जिसके जीवन में सुगंधि है, जिसके पास बैठने मात्र से एक आनंद की झरना झरती है और आप बैठने से ही आनंदित हो जाते हैं, खुशी महसूस करते हैं। साधु के अनेक लक्षण हैं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साधु की महिमा को बखान करते हैं। साधु की महिमा का बताने का तात्पर्य इतना ही है कि तुम्हारी प्रीति संसार से टूटकर साधुओं के साथ हो जाए, महापुरुषों के साथ हो जाए। क्यों? क्योंकि जगत से प्रीति करने पर दुख कलेश और संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन संतों के साथ प्रीति, साधुओं के साथ प्रीति करने पर तुमको लोक और परलोक दोनों मिलता है। चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ हैं। धर्म है जिसके धारण करने से मनुष्य स्वयं सुखी हो, आनंदित हो और लोगों को भी प्रसन्नता दे, लोगों के जीवन को भी आनंदित करे। जिसके मार्ग पर चल, जिसका सहारा लेकर व्यक्ति परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर ले, उसे धर्म कहते हैं। अर्थ जो संसार की आवश्यकताएं हैं जीवन को जीने के लिए, वह अर्थ से प्राप्त होता है। और काम है, काम नाम कामना का है, इच्छा का है। जो इच्छा तुम्हारी आत्म अनुभूति में सहायक हो वही वास्तविक इच्छा है। जिस इच्छा से तुम्हारा पतन हो जाए, जिस इच्छा से तुम्हारी बुद्धि विषयों की तरफ लालायित हो, वह इच्छा नहीं, वह तो जहर है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष उसे कहते हैं सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। जो हमारे अंदर अज्ञान है, अंधकार है, अंधकार का मिट जाना सदा के लिए और परम प्रकाश का अंदर ही साक्षात्कार, अंदर ही दर्शन, और उसके दर्शन के बाद पूरा का पूरा जिंदगी आनंदमय प्रकाशमय हो जाए, स्वयं प्रकाशमान हो, दूसरों को भी एक रास्ता एक प्रकाश दें। इस संसार में यदि कोई परोपकारी है तो वो साधु है, दूसरा परोपकारी हो ही नहीं सकता। परमात्मा को पाए बगैर कोई परोपकारी नहीं हो सकता। क्यों? उसके पहले जो है परोपकार के नाम पर व्यापार ही होगा, अपनी स्वार्थ की पूर्ति होगी। ये हो सकता है कि दिखावा भावे कुछ हो, लेकिन कुछ न कुछ कामना अवश्य होगा। एक साधु होते हैं, उसकी हरेक अदा के पीछे परोपकार ही होता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साधु की महिमा बता रहे हैं कि इस संसार में साधु पुरुष कैसे होते हैं और उनका जीवन कैसा होता है। श्लोक, अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, साध जनक की अचरज कथा। साध जना की अचरज कथा, अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। सर्वप्रथम तो ब्रह्म ज्ञान एक आश्चर्य है, और ब्रह्म ज्ञान को जिन्होंने पा लिया ऐसा व्यक्ति भी दुर्लभ है, आश्चर्य है, सारे नहीं है। ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ है, ब्रह्म ज्ञान को पा लेना दुर्लभ है, और ब्रह्म ज्ञान को पाकर ब्रह्म ज्ञान को कराने की क्षमता पैदा होना ये और भी ज्यादा दुर्लभ है। और ब्रह्म ज्ञान को सुनने वाला जिज्ञासु भी दुर्लभ है। चार चीजें दुर्लभ है, ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ है, और जिसने संतों को साधुओं का संगत करके जिसने ब्रह्म ज्ञान को पा लिया ये भी दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब कोई कोई। और ब्रह्म ज्ञान को पा करके, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद एक करुणा दया उसके अंदर एक मेहर पैदा होता है कि जो हमने बहुत कठिनता से प्राप्त किया है इस संसार के दुखी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाए। दुख को हरने के लिए और परमानंद देने के लिए उनके अंदर एक आंतरिक इच्छा हो जाती है। और ब्रह्म ज्ञान को सुनने वाला भी दुर्लभ है। कौन सुनता है? संसार के फिजूल बातों में ज्यादा रुचि होती है लोगों को। जिसके पूर्व जन्म के बहुत ज्यादा पुण्य हो उसी को ब्रह्म ज्ञान मीठा लगता है। और ब्रह्म ज्ञान को सुनकर उसका मनन करने वाला और अपने जीवन में घटाने वाला और ब्रह्मज्ञानी का संगत कर करके स्वयं भी ब्रह्मज्ञानी हो जाना ये भी अति दुर्लभ है। इसीलिए साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसे साधु जो ब्रह्म दिशय ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए। जो सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जो जागा हुआ है, जो इस संसार को प्रभु मैं देखता है, चारों तरफ प्रभु का ही जो दर्शन करता है, ऐसे साधुओं की आश्चर्य कथा साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बता रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं साध कै संग अगोचर मिले। यदि तुम साधुओं का संग करोगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि हर एक लोगों के मन में यही होता है, ये करेंगे तो क्या होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं अगोचर मिले। अगोचर का भाव होता है, गोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों से प्राप्त हो, आंख से जो देखा जाए, कानों से सुना जाए, हाथों से जो पकड़ा जाए और चमड़ी से कठोर कोमल का अनुभव हो, मुंह से जो खाया जाए उसको गोचर कहते हैं। जो इंद्रियों के पकड़ में हो उसे गोचर कहते हैं और जो इंद्रियों के पकड़ में ना आवे उसको अगोचर कहते हैं। यदि तुम साधुओं का संग करोगे तो अगोचर मिलेगा। और अगोचर एक प्रभु परमात्मा वाहेगुरु अकाल पुरुष है, उसके अलावे अगोचर कोई नहीं। गुरु महाराज फरमान करते हैं साध कै संग अगोचर मिले। साध कै संग सदा पर फूले। यदि तुम साधुओं का संग करोगे तो आनंदित एक अहोभाव तुम्हारे जीवन में खेड़ा ही आ जाएगा। जैसे एक फूल खिल जाए और खिलने के बाद सुगंधियां बांटने लग जाए, तुम्हारा भी फूल जो है, तुम्हारा जीवन भी एक सुगंधिमय हो जाएगा। तुम्हारे अंदर से हरेक का भला, हरेक का कल्याण, हरेक के लिए कुछ करने की भावना आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन ये साधु संग से होगा। साध कै संग आवह बस पंचा। यदि तुम साधु का संग करोगे तो आवह बस पंचा। पंचा क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जो कामना है, कामना का भाव यह है जितना है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, ये कामना ही समाप्त हो जाएगा। और क्रोध उठेगा किस पर, क्योंकि सारे गोविंद हैं। और लोभ किससे करना है, जिससे हमने लोभ करना है उसके अंदर भी वही आत्मा है, तो लोभ किससे करना है, काम क्रोध लोभ और मोह। आत्मा आत्मा से मोह नहीं करता है, हमेशा जो है व्यक्ति विषय से मोह करता है और दुखी होता है। और अहंकार, जब एक प्रभु परमात्मा ही सब जगह है तो अहंकार किससे करना है। साधु का संग करने से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश में हो जाता है, अर्थात तुम इसके चंगुल में नहीं पड़ते। साध के संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस भुंचा। साधु का संग करने से तुम्हें अमृत प्राप्त होगा, अमृत अर्थात ज्ञान, अमृत अर्थात भक्ति, अमृत अर्थात आनंद। और अमृत तो एक ही है, प्रभु का नाम। साध संग अमृत रस भुंचा, यदि तुम साधु का संग करोगे तो तुमको पीने के लिए अमृत मिलेगा। एक समय की बात है कि बृहस्पति जो देवताओं का गुरु है, उसका एक पुत्र था, उसका नाम था कच्च। कच्च अपने पिता के पास आया बहुत श्रद्धा भक्ति से, और कच्च कहता है कि हे पिताजी, मैं आपके चरणों में पिता भाव से नहीं, आपको मैं गुरु समझकर और शिष्य भाव से आया हूं। आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य। ऐसी भावना सुनकर बृहस्पति बहुत खुश हुआ, क्योंकि ज्ञान जो है हमेशा गुरु और शिष्य का संबंध होने पर ही ज्ञान होता है। बृहस्पति कहते हैं कि हे सौम्य, हे शिष्य कच्च, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मैं परम शांति चाहता हूं, मैं आनंद चाहता हूं, मैं हर एक परिस्थिति में साक्षी भाव होकर रहना चाहता हूं, परिस्थितियां मेरे ऊपर हावी ना हो, मैं परिस्थितियों का दास ना हो जाऊं, इसके लिए मुझे कुछ ब्रह्म ज्ञान दें, कुछ रहस्य समझाएं। बृहस्पति कहते हैं जाओ तपस्या करो। कच्च चला गया जंगल में, बहुत समय तक तपस्या किया, सालों तपस्या करके आया गुरु के पास, पिता के पास, मुझे शांति नहीं मिला। कहते हैं जाओ फिर तपस्या करो। फिर बहुत समय तपस्या करके आया, कहते हैं पिताजी शांति तो प्राप्त हुई नहीं। उनके पिताजी कहते हैं कि हे शिष्य, हे पुत्र, तुम जाओ फिर तपस्या करो। उसके चित्त में आया कि शायद पिताजी ये कहते हैं कि ये शरीर जो है नाशवान है और इसको अग्नि में जला दें, यही तपस्या है। उसने जी अग्नि इकट्ठा किया, लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाया और उसमें कूदने लगा। बृहस्पति ने कच्च का हाथ पकड़ लिया और कहते हैं बेटा इसको तपस्या नहीं कहते। चित्त त्याग विदुह सर्व त्याग, जो व्यक्ति चित्त के अंदर जो वासना है, वासनाओं का त्याग ही तपस्या है, और वासनाओं का त्याग मात्र साधु संग से होता है। संसार का संग करोगे तो और वासनाएं बढ़ेगी, और साधु का संग करोगे तो वासनाएं क्षय हो जाएगा। बृहस्पति कहते हैं चित्त त्याग विदुह सर्व त्याग, जिसने चित्त को त्याग दिया और चित्त को त्याग करके जो चित्त को जानने वाला साक्षी चिन्ह मात्र आत्मा है, प्रकाश स्वरूप सबके अंदर, तुम उसको जान लो, तुम्हारा वो स्वरूप है। जब बृहस्पति ने ऐसा कहा, कच्छ ने अपने आत्मा में स्थित हो गया, उसको महाप्रकाश हो गया, आनंदित हो गया और उसी वक्त चरणों में गिर पड़ा और कहता है कि मैं धन्य हो गया आपका संग करके। जिसके संग से, जिसके पास बैठने से, जिनके साथ उठने बैठने से आपका जीवन पवित्र होने लग जाए, आपका जीवन पहले से अधिक अच्छा होने लग जाए और जिनके संग करने से आपके विकार खत्म होने लग जाएं, उसका संग कभी नहीं छोड़ना। जिसके संग से तुम्हारा बुद्धि नीचे जाए, जिसके संग से तुम्हारे अंदर वासनाएं बढ़ जाए, जिसके संग से संसार को और प्राप्त करने की तमन्ना बढ़ जाए, उसका त्याग ही तपस्या है। यहां पर साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, साध के संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस भुंचा। साधु के संग करने से अमृत प्राप्त होता है। नारद कहते हैं कि जो व्यक्ति साधुओं का संग करता है वह अमृतो भवति, वो अमृत स्वरूप हो जाता है, सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है, और अंत में कहते हैं नारद तृप्तो भवति, वह अपने जीवन से संतुष्ट हो जाता है, सारी कामनाएं समाप्त हो जाती है। यह मात्र साधु संग से, और किसी के संग नहीं। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज और उपदेश कर रहे हैं, साध संग होए सबकी रीन, साध के संग मनोहर बैन। साधु का संग करने से उसके अंदर इतनी नम्रता आ जाता है व्यक्ति के अंदर, साध संग होए सबकी रीन, सारे के पांव के धूल हो जाता है। सारे के पांव का धूल होने का भाव यह है कि वह बहुत नम्रतावान हो जाता है, निवैसो गौरा होए। और जिस दरख्त में फल लगते हैं वही फल निवा होता है, जिसके अंदर ज्ञान भक्ति सत्संग होता है, साधुओं का संग होता है, वही व्यक्ति के अंदर इतनी नम्रता पैदा होती है। साध के संग मनोहर बैन, साधुओं का संग करने से व्यक्ति की जो बोली है उसमें मिठास आ जाता है। जिसके साथ भी बात करेगा बहुत प्यार से करेगा, क्यों? कि वो जानता है जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं वह मेरा आत्मा ही है, वो परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतहूं धावे, साध संग अस्थित मन पावे। साधु का संग करने से उसका मन जो है इधर उधर दौड़ता नहीं, मन बस में आ जाता है। यूं तो मन बहुत चंचल है, लेकिन दो चीजों से मन बस में होता है, ज्ञान और वैराग्य। बिन वैरागना छूटस माया, और कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान ना होए। ज्ञान से मन बस में होता है। और ये जो 7 दिन का शिविर लगता है उसमें अंतर यात्रा ध्यान के माध्यम से आत्मा का ज्ञान ही कराया जाता है। 7 दिन के बाद व्यक्ति को एक नई जिंदगी, क्योंकि जीवन में 7 ही दिन है, 8वां दिन तो किसी का है नहीं, आठवां दिन तो मैं आज तक किसी का देखा नहीं है। साध के संग न कथहु धावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध संग होने के बाद वह व्यक्ति जहां रहता है आनंदित रहता है, क्योंकि दादू दूजा को नहीं, दूजा मन की दौड़, दौड़ मिटी दूजा गई वस्तु ठौर की ठौर। दादू दूजा को नहीं, दूजा मन की दौड़। दादू जी कहते हैं इस संसार में एक वाहे गुरु के अलावे दूजा नाम की कोई चीज नहीं है, दो नहीं है, द्वैत नहीं है, और द्वैत है तो क्या है, सिर्फ मन की दौड़ है बस। यदि तुम मन को हटा करके देखोगे तो ये संसार तुम्हें परमात्मा दिखेगा, और मन से इस संसार को इसको देखोगे, मन से परमात्मा को देखने पर परमात्मा संसार नजर आता है। ठीक से सुनना इस बात को। जैसे एक काला चश्मा हो तो काला चश्मा से देखेंगे तो सब कुछ काला दिखेगा, हरा चश्मा से दिखेंगे तो सब कुछ हरा दिखेगा। मन एक चश्मा है, मन से यदि परमात्मा को देखोगे तो ये संसार नजर आएगा, और मन को हटा के देखोगे तो ये परमात्मा दिखेगा। या यदि शुद्ध मन से देखोगे तो ये सब कुछ परमात्मा दिखेगा, और अशुद्ध मन से, विषयासक्त मन से देखोगे तो ये सारा संसार दिखेगा। यह तो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है वैसी उसकी सिद्धि होती है। भावना विहीन नर पावे कैसे जगदीश को, जिसके अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, वह जगदीश, जगत का ईश जो वाहेगुरु है, उसको कैसे पा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति चाहता है कि हम इस शरीर से परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लें, उसको शुद्ध मन और भाव पैदा करने की आवश्यकता है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव महाराज उपदेश कर रहे हैं, साध कै संग न कतहु धावे, साध संग अस्थित मन पावे। साधु का संग करने से व्यक्ति जो है टिकाव में आ जाता है, ठहराव में आ जाता है, क्योंकि अविनाशी सुख आपन आसन। नाशवान सुख चाहिए, थोड़ा सुख चाहिए तो संसार में दौड़ो, और नाश से रहित सुख, अविनाशी सुख अर्थात सुख मन यदि प्राप्त करना है तो वो तुम्हारे आसन में, और तुम्हारा आसन है आत्मा, और दूसरे का आसन है शरीर। दो आसन है, एक शरीर एक आत्मा। आत्मा तुम्हारा आसन है और शरीर जो है पांच तत्वों का आसन है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। ये जो पांच तत्व हैं, पांच तत्वों से ये शरीर बना है, ये शरीर पांच तत्वों का है। यदि तुम पांच तत्वों को मैं मेरा कहोगे तो दुखी होगे, और अपने घर में बैठोगे आत्मा में तो अविनाशी सुख मिलेगा, सुखमनी प्राप्त होगा। साध कै संग मायाते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न। साध कै संग मायाते भिन्न, जो व्यक्ति साधुओं का संग करता है वो माया से पार हो जाता है। तीन गुणों को माया कहते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। रजगुण तमगुण सतगुण यह तेरी माया, गुरबानी। तीन गुण संसार है, और टू गो बियॉन्ड थ्री गुनाज वो तुम्हारी अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति है। जब आप एकांत में बैठो, एक छोटी सी ध्यान की विधि समझा रहा हूं, आप एकांत में बैठो और एक भाव करो कि जो जान लिया जाता है वो मैं नहीं हूं। शरीर जाना जाता है, इंद्रियां जानी जाती हैं, मन जाना जाता है, बुद्धि जाना जाता है, ये सारे विषय हैं, और इन सब को जो जानने वाला है, जो साक्षी आत्मा, वह परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा चिंतन करना है। जो चेतन है वो आत्मा है, जो जड़ है वो संसार है। संसार का की परिभाषा है असत, जड़, दुख रूप, और आत्मा की परिभाषा है सत, चित, आनंद और व्यापक। वह तुम्हारा अपना स्वरूप है। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, साध के संग मायाते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न। यदि तुम साधुओं का संग करोगे तो तुम माया से पार पालोगे। तीन गुण माया है, और तीन गुणों का साक्षी हो जाना, स्थूल शरीर मैं नहीं, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं, कारण शरीर मैं नहीं, इन तीनों शरीरों को जानने वाला चिन्मात्र चेतन आत्मा मैं हूं, और ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा निश्चय करना बुद्धि में, ये माया से पार जाने का तरीका है। साध संग नानक, ये सारी विधियां ध्यान में क्रम से बताई जाती है। साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न, जो व्यक्ति साधुओं का संग करता है वह प्रभु की कृपा से आनंदित रहता, हमेशा आनंदित, आए हरख न गए सो। हर एक परिस्थिति में जब राज देह ता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे तो क्या घट जाए। जो व्यक्ति हर एक परिस्थिति, जिसको परिस्थितियां डुलाता नहीं, वो समझो के परमात्मा में जीता है। जो परिस्थितियों का दास है वो संसार में जीता है। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। कहते हैं साधुओं का संग करने से न आपको एक ऐसी कुंजी मिल जाएगी जो सारे जगत में मित्र हो जाएगा, तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। साध संग दुश्मन सब मीत, साध संग दुश्मन सब मीत का यहां क्या भाव है? साध संग दुश्मन सब मीत का भाव यह है कि जैसे कोई व्यक्ति तुमसे ईर्ष्या करता है, फिर भी उसको प्रेम करो। यदि कोई व्यक्ति तुमको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है, फिर भी उसका भला सोचो। आज नहीं कल वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। लेकिन ये रहस्य साधुओं के संग से मिलेगा। इसीलिए तो गुरु महाराज कह रहे हैं साध संग दुश्मन सब मीत, जितने भी दुश्मन हैं वो उसको जा करके जो है उसका कुछ भला करने लग, जो दुश्मनी करता है ना उसका कुछ भला करने लग जाओ। उसके चित्त में आएगा, देखो मैं इसका बुरा सोचता हूं और ये मेरा भला सोचता है, उसका जो वैर विरोध है ना वो समाप्त हो जाएगा। सारे मित्र हो जाएंगे तुम्हारे सारे। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। साधुओं के संग करने से पुनीत, पवित्र हो जाओ, महापुनीत, तुम्हारा अंदर बाहर सारा पवित्र हो जाएगा। साध संग किस स्यों नहीं बैर, साध के संग ना बीगा पैर। साध संग किस स्यों नहीं बैर, ना को वैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई। ये जो है सो साधु के संग से ही। बैर कौन है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, जो ये जानता है कि यही आत्मा सबके अंदर है और जो सबके अंदर है वही आत्मा इसके अंदर है, बताओ वो किससे बैर करेगा। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ साधु से मिलेगा। जब साधु के द्वारा, संत के द्वारा, ब्रह्मज्ञानी के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा ये अंदर आपको बोध हो गया कि एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, कि एक वाहिगुरु ही सबके अंदर है, तो हम किसी से वैर करते हैं इसका मतलब परमात्मा से वैर करते हैं। ईसा मसीह से किसी ने पूछा कि आप किसको प्रेम करते हो, ईसा मसीह कहते हैं कि मैं तो, मेरी बात छोड़ो, परमात्मा की बात पूछो कि परमात्मा किससे प्रेम करता है। उस जिज्ञासु ने कहा हाँ हाँ मैं तो यही पूछना चाहता था कि परमात्मा किसको चाहता है, किसको प्रेम करता है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं गॉड लव्स दोज हु लव देमसेल्व्स, परमात्मा उसको प्रेम करते हैं जो उसके बंदे को प्रेम करता है, क्योंकि बंदे में ही जो है परमात्मा का वास है। और ऐसा नहीं है कि वो सातवें आकाश में और चौदहवें आकाश में ऑफिस लगा के बैठा, ऐसा नहीं है। घट घट में हरजू बसे संतन कहियो पुकार, संत महापुरुष जो है पुकार पुकार के तुमको बता रहे हैं कि वो जो प्रभु परमात्मा है वह सबके अंदर है। साधु का संग करने से सारा वैर विरोध जो है ईर्ष्या सब समाप्त हो जाएगा। साध के संग न बीगा पैर, साध का संग करने से पैर बिंगा नहीं होता, टेढ़ा नहीं होता। यहाँ पर साध के संग न बीगा पैर का क्या भाव ये है, उसका जीवन टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, छल कपट वाला जीवन नहीं होता, सीधा होता है, सरल होता है। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है ना कि हेर फेर करके बोलना, वो व्यक्ति का दिल साफ नहीं होता। और वैसा लोग जो साधुओं का संग करते हैं, जो अंदर होता है वही बाहर होता है, वो जो भी बोलेगा हृदय से बोलेगा, निष्कपट होके बोलेगा। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारा गुण जो है संत महापुरुषों के संग से ही प्राप्त होता है। साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध का संग करने से कोई मंदा नहीं रह जाता। मंदा क्या है, जिसकी बुद्धि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि में फंसा हुआ है वो मंदा है, और जिसकी बुद्धि आत्मा में है वो चंगा है। मंदा और चंगा दो ही चीज है। जो व्यक्ति के अंदर कामनाएं हैं जितना है उतना से संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए, वो मंदा है। और जितना है उसमें पूर्ण संतुष्ट है, ज्यादा हो जाएगा ज्यादा भी इंजॉय करेंगे, लेकिन जितना है उसको तो इंजॉय करें और शुक्र मनाए। जो हर एक अवस्थाओं में प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु को शुक्र मनाता है, प्रभु को प्रार्थना करता है, प्रभु जितना चाहिए था तुम उससे बहुत ज्यादा दिया है, जब प्रभु के प्रति धन्यवाद का भाव हो तो उसके अंदर जो मंदमति है वो समाप्त हो जाता है। साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंद, साधु का संग करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद सुखमणि है, जो एक है विषयानंद और एक है परमानंद। जो विषयों से आनंद मिलता है
वो थोड़े समय के लिए मिलता है और बाद में कष्ट ही कष्ट है। जिस सुख को पाकर जो एक क्षण के लिए सुख मिले और सारी जिंदगी दुख मिले उसको विषयानंद कहते हैं, और जिसमें पहले थोड़ा सा कष्ट हो और अनंत समय के लिए आनंद ही आनंद हो वो है परमानंद। विषयानंद तुमको संसार से मिलेगा, परमानंद साधु से मिलेगा। इसलिए देख लो किसका संग करना है, क्योंकि गुरु महाराज का फैसला है साध संग जाने परमानंदा। परमानंदा जो है परमात्मा है, वाहेगुरु है, और कोई परमानंदा इस संसार में हो नहीं सकता। एक समय की बात है, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज के पास एक सिख आया करता था, उसका नाम था रतन सिंह। आप लोग जानते हैं ज्यादा, मैं तो थोड़ा बहुत आप लोगों से ही सीखा। रोज बाबा जी का संग करता था, सेवा करता था। एक दिन एक सांप आया और गुरु घर में जाके बैठ गया, और वो आवाज ऐसे करता था जैसे कोई कट्टा नहीं करता, इस प्रकार से जैसे कोई जानवर बोल रहा। एक्चुअली वो पूर्व जन्म में जो है बहुत कंजूस था, धन का बहुत प्रेम था उसको, और अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता मह जो मरे सर्प जोन वन बोलो, वो सर्प की जूनी में आया। सर्प की जूनी में तो आया वो, लेकिन वो किसी टाइम में सत्संग किया था, उस सत्संग के पुण्य के कारण वो संतों को देख करके बहुत खुश होता था। देखो साधुओं का संग का क्या लाभ होता है। वो पशु जूनी होने के बावजूद भी वो बाबा जी को देख करके प्रसन्न होता था, और साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी के कमरे में आ जाना, बैठ जाना, और जब बाबा जी वचन करना तो वो ध्यान से सुनता था। जब सत्संग चाहे वचन करना समाप्त करते थे वो चला जाता था, और बीच बीच में ना आवाज वैसे करता था जैसे कि कोई जानवर बोलता। एक दिन रतन सिंह कहता है कि बाबा जी इधर से सांप गुजरता है, इसको मैं मार दूं? बाबा जी कहते नहीं, इसका मुक्ति करना है, इसका ये अब अंतिम जूनी है और ये ड्यूटी हमें मिला है, इसकी मुक्ति करनी है। संत हृदय नवनीत समाना, संत तो परोपकार के लिए आते हैं संसार, चलते फिरते तीर्थ होते हैं। उसने सोचा कि बाबा जी कहते हैं मुक्ति करना, इसका मतलब मार देना। उसके पास था जी पिस्तौल, वो पिस्तौल लेके आया, कहते हैं बाबा जी पिस्तौल लाया, जिस वेले वो आएगा ना तो वो इसको मार देंगे। बाबा जी कहते ना ना, इसको पिस्तौल से नहीं मारना है। वो पिस्तौल जी वो खेत में दबा के रख दिया कि वो जब आएगा तो इसको जान से मार देंगे। 5 दिन तक वो पिस्तौल दबा रहा, 5 दिन तक वो सांप आया ही नहीं। फिर बारिश हो रहा था, वो सोचा कि पिस्तौल जो है सो पानी से गिल्ला होकर खराब हो जाएगा, घर ले गया, तो 6ठा दिन जो है वो सांप आया सत्संग सुनने के लिए। और रतन सिंह आश्चर्य होता है कि 5 दिन पिस्तौल यहाँ रखा वो आया नहीं, और 6ठा दिन जो है वो आ गया। जब ये बातें बाबा जी को सुनाया, बाबा जी कहते हैं इसीलिए तो तुमको बोला था ना कि पिस्तौल घर रखाओ, फिर तुमने खेत में क्यों रखा? आदमी वचन तो मानता है महापुरुषों को, लेकिन कुछ अपनी भी चला देता है, स्वभाव है ना, कुछ अपना कुछ ना कुछ जो है ना, कहते हैं सारा थोड़े मानना है, थोड़ा तो हम अपनी भी तो चलानी है। वो हुआ क्या जी, 6ठे दिन 7वें दिन वो सांप आता गया, वो सत्संग के प्रताप से जो थोड़ा बहुत पाप था ना, वो समाप्त हो गया। एक दिन बाबा जी कमरे में गए, उस कमरे में जिस कमरे में साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश था वहीं पर वो था, और काफी बड़ा सांप था वो। बाबा जी ने अपना जो है पवित्र चरण उसको छुआए, और पवित्र चरण छूने से वो तुरंत जो है सो वो पलट गया। और कहते हैं कि सांप पलट जाने तो समझो कि वो मर गया, शरीर करके मर गया वो, और एक प्रकाश की तरह निकाल करके वो दिव्य लोक में चला गया। साधु का संग करने से पशु का जीवन इतना पवित्र हो सकता है और मनुष्य का पवित्र हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। ये साधुओं की जो महिमा है ना, ये कोई व्यक्ति बता नहीं सकता कि क्या क्या महिमा। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही को ताप, नाही हो ताप। साधु का संग करने से कोई ताप नहीं रहता। तीन प्रकार के ताप हैं, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघन न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। तीन ताप क्या है? आध्यात्मिक ताप, आधि दैविक ताप, आधि भौतिक ताप। आधि दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा प्रकोप हो, जैसे अचानक भूकंप आ जाए। अभी मुझे पता चला चीन या पता नहीं कहां भूकंप आया है, वो लाखों लोग मर गए, क्योंकि तीन महीना हो गया, तीन महीने से समाचार ये दास सुना ही नहीं है, कोई ना कोई बता जाता। ये देवताओं के द्वारा अचानक इतनी बारिश हो जाए कि बाढ़ आ जाए, चारों तरफ बिजली गिर जाए, जो देवताओं के द्वारा प्रकोप हो उसको आधि दैविक ताप कहते हैं। और आधि भौतिक ताप क्या है? कि जैसे जा रहे चलते चलते उधर से कार जो है से एक्सीडेंट हो जाए, किसी पत्थर से ठोकर लगे, गिर पड़े, हाथ पांव टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जो भौतिक पदार्थों से दुख हो उसको आधि भौतिक ताप कहते हैं। और एक होता है आध्यात्मिक ताप, जो आजकल बहुत है लोगों को, आध्यात्मिक ताप उसे कहते हैं कि चंगा भला बैठे हैं लेकिन मन जो है ना फिर रहा है, मन से जो दुखी है, मन करके जो दुख है, बैठे एयर कंडीशन कमरा में लेकिन जल रहा है ऐसे जैसे 100 डिग्री हो, अंदर 100 डिग्री है, बाहर भावे एयर कंडीशन है। जो मन के द्वारा दुख होता है उसको आध्यात्मिक ताप कहते हैं। देवताओं के द्वारा जो दुख हो उसको आधिदैविक ताप, और संसार के 5 भूतों के द्वारा जो दुख हो, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी के द्वारा, उसको आधि भौतिक ताप कहते हैं। लेकिन ये तीनों ताप की निवृत्ति कैसे होगी? गुरु महाराज ने हर एक चीजों का उपाय बता रहे हैं, और साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी को गुरु मानियो, ग्रंथ का मतलब जैसे जैसे तुमको कहते हैं उसको सत सत कर मानना ही गुरु मानना है। रौला नहीं पाना गुरु मानियो ग्रंथ है, लोगों के बीच में सो इतना करना जोर जोर से गुरु मानियो ग्रंथ है, और जो गुरु महाराज का हुक्म है उसको कुछ नहीं मानना। हुक्म मनिए होवे परवान, तक खसमे का महल पाइस। गुरु के वचनों को सत सत कर मानना ही गुरु मानियो ग्रंथ है, सिर्फ बातें नहीं करनी। आजकल तो ऐसे भी लोग हैं कि गुरु मानियो ग्रंथ के पीछे भी पॉलिटिक्स होता है, ज्यादा रौला पाएंगे लोग धार्मिक समझेंगे, ज्यादा वोट मिलेगा। कहां आदमी कहां गिर चुका है। साध के संग नाही हो ताप, साध के संग तजय सब आप। साधु का संग करने से जो आपा भाव है, आपा भाव का मतलब अहंकार, कि मैं भी कुछ हूं, देखा जाए तो व्यक्ति क्या है, एक बूंद ही है ना, एक बूंद से थोड़ा सा डेवलप हुआ है और क्या है। साध कै संग तजय सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई। कहते हैं कि साधुओं की महिमा को कोई आदमी बता नहीं सकता, परमात्मा ही जानता है या साधु जानता है। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभ बन आई। नानक साध प्रभु बन आई, आपे जाने साध बढ़ाई। साधु की महिमा को या तो परमात्मा जानता है या साधु की महिमा को साधु ही जानता है। एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सो। ए जी साधु इतने बजे उठते हैं जी, ये जी ये खाते हैं जी, ये पीते हैं जी। हम जो है ना, हम 100 गलतियां करें लेकिन साधु का एक गलती जो है वो नजर आता है, उसके 100 गुण नजर नहीं आते। ये व्यक्ति का दुर्भाग्य है। गुरु महाराज कहते हैं नानक साध प्रभु बन आई। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं कि साधु के साथ जो नानक साध प्रभु बन आई। साधु जो है, साधु तो एक प्रभु का होता है जिसका जो है 24 घंटा चलते फिरते सोते बैठते जागते, जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार है, वो जो है सो पूर्ण साधु है। साध कै संग न कभू धावे, साध कै संग सदा सुख पावे। साधु का संग करने से जो भागना है, जो आदमी टिकता नहीं ना, कभू मनुआ ऊब चढ़ता है कभू जाए प्याले, लोभी मनुआ थिर न रहता है चारे कुंटा भागे, भागई फिरा भागई। साध कै संग न कभू धावे, आदमी भागता नहीं ज्यादा है, संतोष आ गया तो भागना क्या है। साध कै संग सदा सुख पावे, सदा सुख जो है राम है, सदा सुख वाहिगुरु है, सदा सुख सुखमणि है। और यदि तुम साधु का संग करोगे तो सुखमणि प्राप्त होगा, आज तो फैसला ही होगा। मात्र साधु के संग से सुखमणि मिलेगा। साध कै संग सदा सुख पावे, सदा सुख सुखमणि को बोलते हैं। साध कै संग सदा सुख पावे, साध संग बसत अगोचर लहे, साधु कै संग अजर सहे। साध संग बसत अगोचर लहे, साधु का संग करने से जो अगोचर परमात्मा है, जो आंखों से नहीं दिखता, ज्ञान इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता, ऐसा जो प्रभु परमात्मा वाहिगुरु है, वो लहे का भाव होता है, आदमी जान लेता है, अनुभव कर लेता है, लेकिन साधु के संग से। साधु कै संग अजर सहे, साधु का संग करने से उसके अंदर बर्दाश्त करने की एक क्षमता आ जाता है। 6 चीजें यूं तो परमात्मा के मार्ग में 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है, विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति और मुमुक्षुता। 4 चीजें जीवन में होगा तो समझ जाओ कि तुम प्रभु के मार्ग में जाना तुम्हारा शुरू हो जाए। विवेक क्या है? सत्य असत्य का विचार, हमेशा एवरी टाइम बी कॉन्शस कि हम जिधर जा रहे हैं वो आत्मा का मार्ग है या संसार का मार्ग है। सत्य असत्य का विवेक करना, विवेचन करना, होश पूर्वक जीवन को चलाना, ये विवेक है। वैराग्य, वैराग्य का भाव यह है कि हमेशा चित्त में ये याद रखना कि ज्योतन उपजिया संग ही सोभी साधना होया। जब ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये साथ नहीं जाएगा तो इसके साथ जितने संबंध बने हैं वो कैसे साथ जाएगा। चित्त में 24 घंटा याद रखना, यह है वैराग्य। और सठ संपत्ति, सठ संपत्ति माने छह संपत्ति, छह प्रकार की संपत्ति। वो छह संपत्ति क्या है? संपत्ति वेल्थ, धन, छह धन है, वो है सम, दम, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा और उपराम। ये छह संपत्ति है। सम क्या है? मन को विषयों में रोकने का नाम सम है और इंद्रियों को विषयों से रोकने का नाम दम है। मन विषयन तय रोकनो सम तिहि कहत सुधीर, इंद्रिय गण को रोकनो दम भाखत बुधवीर। स्वामी निश्चल दास जी विचार सागर में बताते हैं कि मन को विषयों से बार बार रोकना ये सम है और इंद्रियों को विषय से रोकने का नाम दम है। सम, दम, श्रद्धा। जो धुर की वाणी है उसको सत सत कर मानना और साधुओं के प्रति प्रीति, साधुओं पर शंका नहीं करना, इसको श्रद्धा कहते हैं। सम, दम, श्रद्धा। समाधान, समाधान का भाव यह है कि अपना मन जो है को हमेशा अंतर्मुख रखना, उतना ही देखना है जिससे काम चल जाए, नहीं तो अखी देखना रजियां। आगे तो आप लोगों को सब पता ही है, सारा याद भी है वाणी। उतना ही देखना है, उतना ही सुनना है, उतना ही स्वाद लेना है जिससे गुजारा हो जाए। सम, दम, श्रद्धा, समाधान और तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब है सर्दी गर्मी को सहारना, ये तो साधारण अर्थ है। तितिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? बोली को बोली को सहना, हर एक परिस्थिति में सम रहना, तितिक्षा। ऐसा नहीं कि घर में जो है किसी ने थोड़ा सा प्यार से नहीं बोलना, अंदर आग लग गया है जी, बहुत जो है इसको तो कदर ही नहीं है, इसके माँ बाप सिखाए ही नहीं है, सास ऐसे बोल देती है और सास चाहती है कि बहू रिस्पेक्ट करे, कैसे करे? सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, साथ में मीठा। और बहू भी जो है सास कहती है कि बेटा एक गिलास पानी ले, तुम चंगे भले हो तुम नहीं ले सकते। देखो ये जो है ना, इस तरह की जो बोली है वो घर में जो है क्लेश पैदा करता है। लेकिन ऐसे भी लोग घर में हैं जो तितिक्षा, बोली कुबोली को सहना, दोनों अवस्थाओं में अंदर से सम रहना, ठीक जर जाना, उसको तितिक्षा कहते हैं। सम, दम, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा और उपराम, सारे के बीच में रहना है और अंदर से उपराम रहना है। ये छह संपत्ति है और चौथा है मुमुक्षा, यानी मोक्ष की इच्छा पैदा, प्यास, प्रभु से मिलने के लिए तड़प, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षता। ये चार चीजें पहले अपनाओगे तो प्रभु के तरफ तुम एक कदम चलोगे। पहले ये जो है ये अपनाना बहुत जरूरी है। जब तुम्हारे जीवन में ये सारी बातें आ जाएगी तो साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज साध के संग बसत अगोचर लह, साधु संग साधु के संग अजर सहे, साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साधु का संग करने से तुम सबसे ऊंचे स्थान में पहुंचोगे और साधु का संग करने से जो प्रभु का महल है वहां तुम चले जाओगे। साधु के संग दृढ़ सब धर्म, साधु का संग करने से तुम्हारे अंदर धर्म आ जाएगा, धर्म के मार्ग पर चलोगे। साध के संग केवल पार ब्रह्म, साधु का संग करने से तुम्हारा जीवन का लक्ष्य जो है सो सिर्फ परमात्मा वाहेगुरु होगा। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग पाए नाम निधान। जो निधियों का खजाना प्रभु का नाम है वाहेगुरु, ये साधु की कृपा से मिलेगा। और उसके कृपा से जब नाम जो है, नामी का ज्ञान मिलेगा और नाम दान मिलेगा, ये साधु के संग से। साध कै संग पाए नाम निधान, जब नाम निधान साधु के संग से मिल जाएगा तो नानक साधु कै कुर्बान। कहता है ऐसे साधु के ऊपर हम कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं, कि जिनके संग से हमें नाम दान मिला है और नामी का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। यदि तुम साधु महापुरुषों का संग करोगे तो आपका जीवन इतना पवित्र हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि परमात्मा तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। और जब परमात्मा बैठ जाएंगे ना, तो संसार जो है आप ही भाग जाएगा और आपका लोक सुखी परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।